जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नेतै गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगचारी अष्टोत्तर श्री श्रीमदीस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Oh, 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 oh. तो बन सक कर सकते बंद एसी को? बंद हो गया, बंद कर दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आज आप जानते हैं क्या विशेष दिन है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया है आज। अक्षय तृतीया का क्या मतलब है? नहीं, क्यों ये क्यों, इसका कारण क्या है, ये है क्या विशेषता क्या है? हाँ, ये तो हमें कुछ मिला नहीं ऐसा कि ऐसा उल्लेख हो कहीं, हो सकता है, हमें तो नहीं पता इसके विषय में। लेकिन ये जो विशेष तिथि है, ये पिछली बार सतयुग जो है प्रारंभ हुआ था इस तिथि को। पिछली बार सतयुग कब प्रारंभ हुआ था? पिछली बार ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग के पहले क्या था? द्वापर। उसके पहले क्या था? उसके पहले सतयुग था, है ना। तो कितने साल पहले शुरू हुआ था सतयुग? है द्वापर, द्वापर युग 864,000 साल है, और फिर त्रेता युग 12,96,000 साल है, फिर सतयुग 17,28,000 साल बाद है? इसको जोड़ेंगे 43,20,000 साल तो कलयुग को मिलाकर के है, कलयुग को मिलाकर के है। तो कलयुग को घटाओ तो फिर 4,27,000 घटाओ 43,20,000 साल में 4,27,000 घटाओ तो इतने साल पहले सतयुग शुरू हुआ था। चलो जो भी हो, मतलब ये मतलब हिसाब है कि सतयुग तब शुरू हुआ था, इस तिथि को शुरू हुआ था, है ना। तो ये तिथि इसलिए विशेष है। अगली बार अभी सतयुग फिर शुरू होगा कितने समय के बाद? हाँ, 4,27,000 साल के बाद फिर सतयुग शुरू होगा, तो उसकी तिथि होगी अक्षय नवमी। अक्षय नवमी आती है कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्षी नवमी तिथि अक्षय नवमी आती है, तो वो भी जो है बहुत पवित्र है। सतयुग शुरू होगा 4,27,000 साल के बाद सतयुग शुरू होगा, है ना। और अभी 38,00,000 जो भी हो, करीब 38,00,000 साल पहले सतयुग जब शुरू हुआ था तो आज की तिथि में शुरू हुआ था अक्षय तृतीया, है ना। तो है क्या हो सकता है अक्षय पात्र भी दिया हो, तो वो अलग बात है। इस तिथि को अक्षय पात्र अगर सूर्यदेव ने दिया है तो वो भी हो सकता है, वो क्योंकि वो मुझे पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा कहीं, ठीक है ना। तो इस तिथि को और भी कई कार्य हुए, बहुत से कार्य हुए, और माधवेंद्रपुरी ने इस तिथि को शुरू की, चंदन यात्रा शुरू की। तो ये तिथि कुछ ऐसी विशेष होती है कि कोई भी कार्य करना है, शुभ कार्य, तो इस तिथि को पहले से निश्चित कर लेते हैं कि अगर ये आने वाली है तो इस दिन से शुरू करें। कोई अगर बड़ा आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है, अगर ये तिथि आने वाली है, तो हम जो है उतने दिन का इंतजार करके इस तिथि को वो कार्य करते हैं, तो ये है। लेकिन अक्षय तृतीया का जो दिन है, ये मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दिन है, बहुत बड़ा परिवर्तन। इस पर विचार करना है कि सतयुग जब प्रारंभ होता है तो उसके एक दिन पहले क्या होता है? कलयुग होता है। अब एक दिन पहले कलयुग और अगले दिन सतयुग, आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन। सोचिए कलयुग से एकदम सतयुग आना, कि सतयुग से त्रेता आना, तो परिवर्तन नहीं, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। कि सतयुग में जैसे आयु 1,00,000 साल की बताई गई, ठीक है, तो जैसे जैसे सतयुग आगे बढ़ता जाता है तो आयु जो है 1,00,000 साल से घटती जाती आयु है, और सतयुग के अंत में आयु 10,000 साल की हो जाती है, और फिर त्रेता युग शुरू होता है तो आयु 10,000 साल की होती है, हैं, और फिर त्रेता जैसे आगे बढ़ता है तो घटती आती है, और त्रेता के अंत में आयु 1,000 साल की होती है, और फिर द्वापर जब शुरू होती है तो 1000 साल से शुरू होती है, तो कोई परिवर्तन ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, कुछ भी परिवर्तन नहीं कि जहाँ समाप्त होता है कोई युग तो अगला युग वहाँ से शुरू होता है ना। जैसे कि आयु की चर्चा की हमने, है ना, द्वापर युग के अंत में, त्रेता युग के प्रारंभ में जो आयु 10,000 साल की होती है, तो जब त्रेता युग समाप्त होता है तो 1000 साल की आयु रह जाती है, और जब द्वापर युग शुरू होता है तो 1000 साल की आयु होती है, और फिर द्वापर के अंत में आयु 100 साल की रह जाती है, और जब कलयुग शुरू होता है तो 100 साल की आयु होती है, और घटते घटते आयु 20 साल की, अब कलयुग के अंत में आयु 20 साल की हो जाती है मनुष्यों की, और एकदम सतयुग में आए एकदम से 1,00,000 साल। कितना बड़ा परिवर्तन कलयुग की समाप्ति में आयु 20 साल की है, और अगले दिन एक कट्ठी 1,00,000 साल की हो गई। कितना बड़ा परिवर्तन है, आप समझ रहे कितना बड़ा परिवर्तन है। उसी प्रकार से धर्म का जो है चारों चरण धर्म के जो है मौजूद होते हैं सत्य की प्रारंभ में, है ना, सत्य शौच दया और तप, ये चार चरण हैं सत्युग में, चारों चरण धर्म के होते हैं, और सत्युग जैसे आगे बढ़ता जाता है तो एक चरण जो है घटता जाता है, कौन सा, तपस्या का है, और सत्युग की समाप्ति में जहाँ सत्युग समाप्त होता है तो तपस्या का चरण खत्म हो गया, केवल 3 चरण रहे, ठीक है। अब त्रेता युग शुरू होता है तो धर्म के 3 चरण होते हैं, है ना, और एक चरण जो है, अब जो तीसरा चरण है वो घटता जाता है, कौन सा, सत्य शौच दया, दया घटता जाता है, और त्रेता युग की समाप्ति जब होती है तो दया बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब 2 ही चरण रहे सत्य शौच के, तो द्वापर युग जो है अब शुरू हुआ तो 2 चरण से शुरू हो रहा, और फिर दूसरा चरण अब इसका घटता जा रहा है शौच, है, और द्वापर की समाप्ति में शौच भी चरण खत्म हो गया, केवल 1 चरण को सत्य का रह गया। अब कलयुग जो है शुरू होता है तो सत्य का चरण है से शुरू होता है, और जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है तो सत्य का चरण घटता घटता और कलयुग की समाप्ति में खत्म, ठीक है, और अगले दिन सत्युग तो पूरे चारों के चारों चरण। कितना बड़ा परिवर्तन है ना, तो अक्षय तृतीया मतलब ऐसे देखो तो कितना बड़ा परिवर्तन है ये। तो इसलिए इसको जो है इसलिए महत्व दिया जाता है कि इसमें मतलब आप कोई भी कार्य करें तो इसका बड़ा मतलब फल है। नहीं, वो तो मैंने बताया कि पिछली बार सत्ययुग जब शुरू हुआ था तो अक्षय तृतीया को शुरू हुआ था, अब अगली बार जो सत्ययुग शुरू होगा अक्षय नवमी को शुरू होगा, जो कार्तिक शुक्ल नवमी, ये वैशाख शुक्ल तृतीया है, वैशाख शुक्ल तृतीया है ये, हैं, तो ये भी सत्यों की प्रारंभ की तिथि है, और कार्तिक शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी हैं जो वो आएगी तो वो भी सत्यों की प्रारंभ की तिथि, लेकिन वो आगे भविष्य में होगी, ठीक है ना। तो अक्षय तृतीया का इसलिए मतलब बड़ा महत्व है, है ना, और इस तिथि से माधवेंद्रपुरी ने चंदन यात्रा शुरू की थी, है ना। तो चंदन जब लेकर के आए थे माधवेंद्रपुरी और गोपीनाथ जी के शरीर में लगाने का आदेश मिला था, है, तो अब ये तिथि आने वाली होगी तो उन्होंने फिर इस तिथि से शुरू किया था, है? तो ये जो लीला है इसको हम सुनेंगे, और ये माधवेंद्रपुरी लीला बार बार सुनी जाती है और बार बार सुनाई जाती है, लेकिन इसमें इतना रस है कि ये भी चंदन की तरह है, ये जो कथा है ये भी चंदन की तरह है, चंदन को जितना आप घिसते हैं उतना उसकी सुगंध और शीतलता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से कथा को जितने बार आप सुने उतना ही रस आपको मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी जो साहित्य है अखबार न्यूज़पेपर उपन्यास जितने भी होते हैं एक बार पढ़ दिया तो उसका फिर सब रस खत्म, फिर आप फेंकते हैं, कोई उपन्यास आपने एक बार पढ़ लिया तो आप फिर फेंक देते हो उसको, फिर आप बिल्कुल नहीं देखना चाहते न्यूज़पेपर एकदम, है ना। तो वो किस तरह का है, जो भौतिक साहित्य है वो किस तरह का है, जैसे कि एक बार चबा करके आपने चूस लिया और फेंक दिया और दोबारा आपने उसको नहीं दोबारा चर्वित को आप दोबारा चर्वण नहीं करेंगे, है ना। तो जो भौतिक साहित्य है उसको दोबारा पढ़ने का मतलब है चर्वित को चर्वण करने की तरह, मतलब बड़ी निंदा की बात है। पिछले दिन का समाचार पत्र है अगर कोई देगा तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे कि कल का समाचार पत्र क्यों दे रहे मुझे। लेकिन ये जो साहित्य है ना, ये वो चर्वित चर्वण की तरह नहीं है, ये कैसा है, चंदन की तरह है। ये चंदन की तरह है, जितना घिसो उतना क्या होता है और सुगंधी, हाँ सुगंधी और शीतलता इसकी जो है निकलती जाती है। तो ये इस तरह की है ना। और ये जो कथा है ये स्वयं चैतन्य महापुरुष सुना रहे हैं। आप सोचिए कैसी कथा होगी, चैतन्य महापुरुष स्वयं सुना रहे हैं, है ना। तो और ये कथा जो है महापुरुष सुना रहे हैं अपने गुरु ईश्वरपुरी से जो सुनी थी चैतन्य महापुरुष ने, वो अपने संगियों को सुना रहे हैं क्षीरचोरा गोपीनाथ के मंदिर में, है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहाँ घूमते घूमते वे गोवर्धन पर्वत पहुँचे। जब वृंदावन गए थे माधवेंद्रपुरी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु से भी पहले गए थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी वृंदावन की हालत कैसी थी, बिल्कुल उजड़ा था, क्योंकि मुसलमानों के आक्रमणों से सब मंदिर ध्वस्त हो गए और अर्चा विग्रह सब इधर उधर छिपा दिए गए हैं, और जिन्होंने छिपाया वो भी शरीर छोड़ चुके हैं। तो इसलिए उन अर्चा विग्रहों का अब कोई भी पता नहीं, जब तक वो अर्चा विग्रह स्वयं अपना पता ना बताएं कि हम यहाँ पर हैं, तब तक कोई उपाय नहीं जानने का। तो उस समय मतलब वो हाल था, है ना। तो माधवेंद्रपुरी उस समय वृंदावन में आए, तो उस समय ना सड़कें थीं और ना कुछ मकान थे, ना कोई मंदिर था, क्या था, घोर जंगल, घोर जंगल। वृंदावन का कोई चिन्ह नहीं था, कोई वृंदावन को कोई चिन्ह नहीं था, घोर जंगल था और जंगली पशु थे, हिंसक पशु भी थे उसमें। और कुछ घर मकान थे तो वो ऐसे लोग रहते थे अशिक्षित बिल्कुल, जिन्हें कुछ भी मतलब महिमा पता नहीं वृंदावन की, या कोई कुछ नहीं जानते, तो वे बिल्कुल अशिक्षित थे, ऐसे लोग थे। तो माधवेंद्रपुरी आए थे वृंदावन, तो सबसे पहले जो है वृंदावन में उनको एक अर्चा विग्रह ने अपना पता बताया कि मुझे निकालो, है ना। ऐसे एक करके कितने अर्चा विग्रहों ने अपने पता बताए कि मुझे, मैं यहाँ हूँ मुझे निकालो, मैं यहाँ हूँ मुझे निकालो, है ना। इस तरह से आचार्यों ने जो है निकाले और मंदिर स्थापित किए, है ना। तो माधवी पर जब वृंदावन गए तो गोवर्धन पर्वत में पहुंचे। पूर्वे श्री माधव पुरी आईला वृंदावन, भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। माधवेंद्रपुरी प्रेम मत वाले रहते थे, उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात, दिन और रात, है ना। सोचिए, और एक ऐसे सन्यासी थे जिसकी वृत्ति अयाचक थी, अयाचक वृत्ति का सन्यासी, बहुत मुश्किल। अयाचक वृत्ति का मतलब कि किसी से खम मांगना नहीं। अब अपने लिए तो कभी सन्यासी बनाता नहीं, पकाता नहीं भोजन, है ना। और एक स्थान में अगर पड़ा रहे और कुछ नहीं मांगता है तो आसपास के लोगों को पता चल जाता, तो फिर जिम्मेदारी समझने लगते, भाई ये मांगते नहीं इनको दो। तो ये ऐसे भी नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएं फिर कौन जाने, आप समझ रहे हैं। अगर एक स्थान में पड़े रहें या बैठे रहें एक स्थान में, तो आसपास के लोगों को पता चलता है भाई ये महाराज ऐसे हैं, चलो तो पहुंचा देंगे भोजन, है कि नहीं। तो फिर तो बहुत संभावना है कि भोजन मिलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ मांगे नहीं और वो सन्यासी भी जो है चलता रहे एक स्थान दूसरे स्थान में, तो जो नए नए लोग हैं वो, उन्हें क्या पता कि ये नहीं मांगते, है ना। ऐसे में भूख लगे, है ना, कितनी मतलब परेशानी, कितनी बाधा होगी, कैसे भजन होगा। लेकिन इनकी स्थिति कैसी थी, शरीर से बहुत ऊपर उठे हुए, शरीर से इतने ऊपर उठे हुए कि इनको कोई बाधा नहीं है, भूख प्यास कोई बाधा नहीं, केवल कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण को जो है इतना उन्होंने समर्पित किया था है? तो इनको जो है दिन रात का भी ज्ञान नहीं था, यानी कि भूख प्यास का भी ज्ञान नहीं था। दिन रात ना तो दिन रात का पता चलता है कि दिन है रात, और भूख प्यास का भी पता नहीं चलता। नहीं तो एक बड़ी बाधा पड़ेगी ना, आप मांग नहीं रहे, आप कृष्ण का भजन क्या करेंगे, फिर तो आप भाई सोचें कौन लाएगा मुझे, कौन देगा मुझे, जब करोगे कौन मुझे खिलाएगा है, मैं भूखा हूँ, परेशान रहेंगे और पूरी दिमाग में अशांति और तनाव बना रहेगा, है कि नहीं, है ना। लेकिन इसलिए कौन है ऐसा माधवीपुरी के अलावा कौन है जो ऐसी अयचक वृत्ति से रहे, और वो भी चलता रहे, चलता रहे, है ना। एक अजगर वृत्ति होती है, अजगर वृत्ति में क्या है कि सन्यासी एक समय पड़ा रहता है, अजगर पड़ा रहता है, तो उसके लिए तो फिर मतलब लोग जान लेते हैं ना कि भाई ये महाराज पढ़ रहते हैं कुछ नहीं, तो वो कोई ना कोई पहुंचा देगा। अजगर वृत्ति तो ठीक है, अयाचक वृत्ति जहाँ मांगना भी नहीं है और चलते फिरते रहना कितना मुश्किल। अब तो कृष्ण के ही मतलब पूरा कृष्ण की ही चिंता है पूरी कि आपको जो है खिलाएं, है कि नहीं। तो इनका जो है मतलब ये हाल था हा? और कभी उठ के बैठते, कभी भूमि पर गिर जाते हैं कृष्ण के प्रेम में, तो इनको होश नहीं है, कृष्ण ही रक्षा करेंगे। अकेले रहते हैं, कोई साथ में दूसरा व्यक्ति भी नहीं, हाँ। वैसे तो अनुचित स्थान में भी भेद नहीं रहता उनको, कैसा स्थान है उनको भेद नहीं रहता इनको। प्रेमे मत ना ही तार, रात्रि दिन है ज्ञान है, छणे उठे छणे पड़े ना ही स्थान स्थान। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है, तो वृंदावन की पहचान केवल तीन चीजों से थी, एक गोवर्धन पर्वत, एक यमुना जी और ब्रजराज, जो कि उस समय की अभी भी हैं तीन चीजें। तो माधवीपुरी ने जो है इन तीन चीजों का दर्शन किया, क्या तीन चीजें, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी ब्रजराज है। तो क्या किया, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और वहां पर लौटे, ब्रजराज में लौटे, है ना, यमुना जी में स्नान भी किया, या इसमें लिखा है गोविंद कुंड में स्नान किया। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवीपुरी गोविंद कुंड पर गए, वहां स्नान किया। गोविंद कुंड भी था, गोविंद कुंड कौन सा है, उस क्या विशेषता है, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था और इंद्र को जो है समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो कृष्ण से क्षमा याचना मांगने के लिए वो जब आए तो ऐरावत हाथी की सूंड में उन्होंने जल भर लिया था आकाश गंगा का, तो उस जल से कृष्ण का अभिषेक किया, तो वो जल जहाँ एकत्र हुआ वो गोविंद कुंड है, है? गोविंद कुंड, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा ही गोविंद कुंड है, है ना, है? हाँ, अभी इस्कॉन ने बना दी है ना? तो वहाँ जो है मतलब उन्होंने स्नान किया, गोविंद कुंड में स्नान किया, गोवर्धन की परिक्रमा करके गोविंद कुंड में स्नान किया। इसका मतलब गोविंद कुंड से ही शुरू की होगी परिक्रमा, जिस बिंदु से आप शुरू करें उस बिंदु पर पहुंचे तब परिक्रमा पूरी होती ना, तो गोविंद कुंड से परिक्रमा शुरू की और गोविंद कुंड में पहुंच गए, परिक्रमा पूरी हुई, फिर वहां स्नान किया, फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक वृक्ष शैले परिक्रमाकारी गोविंद कुंड आसी, स्नान कारि वृक्ष तले आछे संध्या बसी। जब वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात गोप बालक दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला। एक बालक आया समझ गए कौन बालक है, कृष्ण है। गोपाल बालक एक दुग्ध भंड लैया हासी आसी आगे धारे के छुपा ले ले हासिया, हंस करके बोला बालक ने, हंस करके बोला है हे पुरी है तुम मेरे लाया हुआ दूध पियो, तुम खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांगते, तुम किस तरह का ध्यान कर रहे हो बालक किस तरह का ध्यान कर रहे हो, मतलब कहने का है कि जब मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम किसका ध्यान कर रहे हो लेकिन है उनका संकेत तो ये था, लेकिन जब तक ना समझाए तो कौन समझेगा कि ये कहने का क्या मतलब है। कहने में जो है बड़ा रहस्य था, लेकिन माधवीपुर कैसे समझ सकते हैं अगर खुद नहीं समझाएंगे तो, है ना। तो क्या करें, किसका ध्यान कर रहे हो। पूरी है ये दुग्ध लैया कर तुम्हें पाना है, मांग के ने ना ही खाओ की बाकार ध्यान। पूरी और पूरी बोल रहे हैं है? जैसे पिताजी हूँ पूरी पूरी कौन बोलेगा है? जो कोई बड़ा व्यक्ति होता है वही पूरी बोलेगा ना, पूरी है ना। तो हे पूरी है ये दुख लेकर के तुम पी लो और मांगे क्यों नहीं खाओ, और मांग करके क्यों नहीं खाते हो। ये कहा मांग करके क्यों नहीं खाते हो। अरे एक बालक जो है पूछे कि मांग करके क्यों नहीं खाते हो कुछ सामान्य बालक थोड़ी हो सकता है जो ऐसा कहे कि मांग करके क्यों नहीं खाते हो। और फिर केवा कर ध्यान, किसका ध्यान कर रहे हो, मतलब कहना कि जिसका ध्यान कर रहे हो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, फिर किसका ध्यान कर रहे हो उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवीपुरी बहुत संतुष्ट हुए, उसी में उनकी भूख प्यास पूरी तृप्त हो गई, संतोष गए, सौंदर्य पी करके आंखों से भगवान का सौंदर्य पिया उन्होंने। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवीपुरी बहुत संतुष्ट हुए और मीठे वचन सुन करके सारी भूख प्यास भूल गए। कानों से मीठे वचन सुने, आंखों से सौंदर्य देखा, है ना, ये भी पिया जाता है कानों से है? और ये भी पिया जाता है आंखों से, रूप को पिया है? और वाणी को भी पिया, आंख से और कान से पिया है। बालक के रे सौंदर्य पूरी रे हाय ले संतोष है, तारे माधुरे वाके गे ले भोगे शोक है। तो पूरी ने कहा तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे जाने कि मैं उपवास कर रहा हूं। पूरी कहे के तुम्हें कहाँ रे तुम्हार वास है, के मते जानी ले आमी कारी उपवास है। कैसे पता चल गया तुमको कि मैं उपवास कर रहा हूं कैसे पता चल गया। बालक ने उत्तर दिया है कि मैं एक गोप हूं, इसी गांव में रहता हूं, अपना परिचय दिया, मैं एक गोप हूं इसी गांव में रहता हूं है, और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। बालक जो है कहे कि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है कोई बालक कह सकता है ऐसा? बालक कहता है हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, है ना। मतलब कहने का है कि भगवान तो जो है पूरे विश्व का भरण करते हैं, है ना, लेकिन वो अपनी शक्तियों के द्वारा भरण करते हैं, लेकिन इस स्थान में तो कृष्ण स्वयं खिलाते हैं, जो भूखा रहता है उसको स्वयं खिलाते हैं। तो कहते हैं हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, है ना। बालक का एक गोप आमी यही ग्राम में बसी, हमारे ग्राम में ते के न रहे उपवासी। इस गांव में कोई है, कुछ लोग तो अन्न मांग करके खा लेते हैं और कुछ लोग दूध पी करके रहते हैं। मेरे गांव में कुछ लोग तो अन्न मांग करके खा लेते हैं है? और वहां मांगो तो सब देते हैं, ब्रजवासी अभी देते हैं, मांगे तो देते हैं, खाने के लिए मांगो तो तुरंत देते हैं, है ना। तो कोई तो मांग लेते हैं है? और कुछ लोग दूध ही केवल पीते हैं और जो नहीं मांगते हैं उनको तो मैं ही देता हूं एक छोटा सा बालक बोलता है, कुछ लोग तो मांग लेते हैं है? और कुछ लोग दूध पी करके रहते हैं और जो नहीं मांगते हैं उनको मैं देता हूं केह अन्न मांगे खाए केह दुग्ध आहार है, अयाचक के जाने आमी दिए ता आहार है। अयाचक लोगों को मैं देता हूं भोजन, मैं खिलाता हूं मुझे सबकी खबर रहती है, एक बालक कह रहा है। हाँ अच्छा, तो फिर लेकिन अब जो है अपनी बात को छिपाने के लिए खबर कैसे मिलती है, खबर कैसे मिलती है? हाँ, उन्होंने पूछा कि तुम्हें मेरी खबर कैसे मिली, तो क्या उत्तर दिया? पानी लेने आई स्त्रियों ने आपको यहां देखा तो उन्होंने दूध देकर मेरे पास भेज दिया है। कैसे पता चला? जालनी स्त्री गण तुम्हारे देखिए गेला स्त्री साहब दुग्ध दिया आमारे पठाइल। बालक ने कहा मुझे शीघ्र ही गायें दुहने जाना है। अब बहानेबाजी भी शुरू कर दी, मुझे जल्दी जाना है, हैं? हैं? किंतु मैं लौट कर दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा, अभी आराम से पियो, बढ़िया स्वाद लेकर के, है ना, कोई जल्दी नहीं है, हैं? कि बर्तन खाली करने के लिए जल्दी जल्दी पियोगे, है ना? तो कह रहे हैं कि मुझे जल्दी है, लेकिन तो आपको कोई जल्दी नहीं पीने की, आप आराम से पियो। मुझे जल्दी है, हैं? किस लिए? गौएं दोहना है मुझे, मुझे गौएं दोहना है, हैं? इसलिए मैं लौट करके दूध का पात ले जाऊंगा। गोतो हाने का रीते चाहिए शीघ्र आमे जाब आर बार आसी आमे ए भांडर लाभ। ये कहकर वो बालक वहां से चला गया। वो बालक अचानक अंतर्धान हो गया। अब देखो कैसे, जैसे गया और एकदम से गायब, है ना? ऐसे नहीं चलते चलते दूर फिर दिखाई दे रहा है, दूर जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, और ऐसा नहीं, जैसे चला एकदम अंतर्धान, है? अंतर्धान हो गया। हाँ, तो माधवेन्द्रपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या हो गया? दूध का पात्र तो मेरे पास है जिसने दिया है, वो बालक एकदम अंतर्धान हो गया। हेते बाली गेला बालक ना देखिए आ रहे माधव पूरी रचते है चमत्कार। और दूध पीने के बाद माधवेन्द्रपुरी ने उस पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर वे बालक की राह देखते रहे किंतु वो बालक नहीं लौटा। दुग्ध पान कर भांडा धुआं राखी ले बाट देखे से बालक के पुनः न आए ले। माधवेन्द्रपुरी को नींद नहीं आई, वे बैठे रहे और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी तंद्रा आई, है? थोड़ी तंद्रा आई, रात भर भजन करते रहे, न दिन में विश्राम किया और रात में भी विश्राम नहीं किया, बैठे हुए भजन करते हैं, तो तंद्रा आई। तंद्रा कैसी होती है? इसको तंद्रा बोलते हैं, हाँ, झपकी तंद्रा उसको बोलते हैं, कि बैठे बैठे आप सो नहीं सकते ना, क्योंकि आप सोएंगे तो गिरेंगे और जब गिरेंगे तो आपकी नींद उचट जाएगी, तो उसको तंद्रा बोलते हैं। तो माधवेन्द्रपुरी को जो है तंद्रा इस तरह से। बसी नाम लय पूरी निद्र नहीं है शेष रहते तंद्रा ही लय है वृत्ति लय। माधवेन्द्रपुरी ने सपने में उसी बालक को देखा, उसी में स्वप्न आया, जहाँ तंद्रा आई उसी में स्वप्न आया, और वो बालक उनके सामने आया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में कुंज तक ले गया स्वप्न में। सपने देखे सही बालक सम्मुख आसिया एक कुंज लैया गेले हाथे ते धरिया। बालक ने माधवेन्द्रपुरी को वो कुंज दिखलाया और कहा मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु और झुलसती गर्मी के कारण बहुत कष्ट हो रहा है। चार प्रकार का कष्ट है, सर्दी, जब सर्दी के दिन में सर्दी लगती है मुझे, हैं, और बरसात में बरसात की बाधा होती है, और हवा चलती है उसकी भी बाधा पड़ती है, और गर्मी, गर्मी के दिनों बहुत गर्मी लगती है मुझे। कुंज देखा यहाँ काहे आमी यही कुंज रही शीत वृष्टि वाताग्नि ते माँ दुख पाई। देखो किसी को, किसी के पास खाना नहीं है तो खाना पहुँचाने आते हैं, लेकिन अपने अपने को नहीं निकाल सकते। देखो भक्तों के कितने आश्रित हैं भगवान, हैं, कि अपने को नहीं निकाल सकते आप, मैं तो यहाँ पड़ा हूँ और मैं कष्ट भोग रहा हूँ, हैं, और दुनिया का कष्ट दूर करते हैं लेकिन खुद कष्ट पा रहे हैं, पड़े हैं उधर। कृपा करके गांव के लोगों को बुलाओ और मुझे झाड़ी से निकालो, उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर स्थापित करो, पर्वत की चोटी पर स्थापित करो। ग्रामेर लोके आनी आमा काढ़े कुंज हिते पर्वत है वो परी लई राके भाले मते। बालक ने कहा कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। एक मठ करी तहाँ कर स्थापन बहु शीतल जल कर श्री अंगे मार्जन। तो भगवान ने ही आज्ञा दी थी माधवीपुरी को, तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर मंदिर बनवाए और वही भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु रूप में आए तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते हैं, दर्शन करने की इच्छा है उनकी लेकिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते हैं। क्यों? तो भगवान ने अपने सिर में धारण किया ना, अपने सिर के ऊपर धारण किया, तो मैं गोवर्धन के, तो भक्त के भाव में भगवान जो है गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते है ना। हाँ मंदिर है लेकिन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो लोग हैं हम लोग गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ते, जबकि गोवर्धन पर्वत के ऊपर बहुत से भगवान की लीलाओं के चिन्ह हैं लेकिन हम लोग नहीं जाते, ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है इसलिए। लेकिन उन्होंने भगवान ने ही मतलब आदेश दिया माधवीपुरी को, और उस समय आवश्यकता के अनुसार भगवान ने आदेश दिया था, उस समय आवश्यकता के अनुसार भगवान ने आदेश दिया था हा? क्योंकि उस समय कोई घर मकान नहीं थे, जंगल ही जंगल था, तो पर्वत के ऊपर सही मंदिर की पहचान होगी, भाई यहाँ मंदिर है, आप समझ रहे हैं। अभी तो जो है सब गलियां घर मकान सब हैं, तो कहीं भी मंदिर हो तो दिखाई पड़े, लेकिन एकदम पूरा जंगल है तो अगर नीचे मंदिर बनाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि सब जंगल और वृक्ष लगे हुए हैं। तो भगवान ने जो है समय की आवश्यकता के अनुसार भगवान का आदेश भी जो है बदलता है ना। तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान ने आदेश दिया, उस समय आवश्यकता थी। एक मठ करी तहाँ कर स्थापन बहु शीतल जल कर श्री अंगे मार्जन। तो वो समय जो है मतलब यही समय रहा होगा, गर्मी का समय रहा होगा, इसलिए कहा कि बहुत शीतल जल से मेरे शरीर को जो है साफ करो, स्वच्छ करो। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ, देखो बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ और सोचता रहा हूँ कि कब माधवीपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। कैसे भगवान जो है आश्रित हैं बहुत दिनों से, है ना, कई सौ सालों से कि माधवीपुरी ने जब जन्म नहीं लिया था तभी भी सोच रहे थे माधवीपुरी कब जन्म लेगा। बहुदन तो मार पाथकारी निरीक्षण कब आसी माधव आमा कारी बेसेवन। मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो मेरा उद्धार करो और मैं सबका उद्धार करूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं पतित हूँ यहाँ पर, तो तुम मेरा उद्धार करो और मुझे ऊपर उठाओ और मेरा दर्शन करेंगे तो मैं सबका उद्धार करूँगा, है ना। तो देखो भक्त का भगवान कितना सम्मान देते हैं कि तुम मुझे निकालो है, तुम मुझे इस कुंज से, इस कांटे के स्थान से निकालो, इस कष्ट के स्थान से निकालो है, तो बाद में जो लोग मेरे दर्शन करेंगे उनको मैं इस संसार के कष्ट के स्थान से निकालूंगा, उनको ऊपर भेजूंगा अपने धाम में, तो मुझे ऊपर भेजो और मैं सबको ऊपर भेजूंगा, है ना। भगवान कह रहे हैं, भगवान जी ऐसे आश्रित हैं। मैंने तुम्हारे, अच्छा हाँ ये हो गया, मेरा नाम गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है, अपना नाम बता दिया पहले से है कि मेरा नाम क्या है, गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। गोवर्धन पर्वत धारण कर सकते हैं लेकिन अपने को निकाल नहीं सकते हैं, पड़े हुए हैं उधर। गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला भाई हूँ। कितना विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। गोवर्धन पर्वत धारण करने वाला मैं ही हूँ, यहाँ पड़ा हूँ। अब तुम्हें उठाओगे तो मैं उठूंगा, मैं उठ भी नहीं सकता हूँ। मेरी स्थापना वज्रनाभ ने की थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, इस स्थान का अधिकारी मैं ही हूँ। मेरा ही गांव है ये। श्री गोपाल नाम है मोर गोवर्धन धारी, वज्र स्थापित आमी यहाँ अधिकारी है, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। कैसी अद्भुत लीला है। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, देखो माधवीपुरी को स्वप्न में बता रहे हैं भगवान है, और ऐसे स्थान में ले गए जो कि उस शरीर से नहीं जा सकते, स्वप्न के शरीर से ही जा सकते थे, क्योंकि वो कुंज ऐसा था कि एकदम कांटे कांटे थे, तो उस स्थान में जा नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो स्वप्न के शरीर से ले गए, स्वप्न के शरीर से जा सकते हैं ना। तो स्वप्न शरीर से ले गए भगवान और उनका हाथ पकड़ कर ले गए, और क्या कह रहे हैं कि जब मुसलमानों का आक्रमण किया, वज्रनाभ ने मेरी स्थापना की थी, जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल में इस कुंज में छिपा दिया। तो उसने क्या गलत किया था? नहीं, उसने मेरी सुरक्षा के लिए, कि मुसलमान लोग क्या करें, खंडित करेंगे ना, तो पुजारी ने मुझे छिपा दिया। फिर वो आक्रमण के भय से भाग गया, वो पुजारी भाग गया। अब किसी को भी सूचित, किसी को भी सूचना नहीं है कि मैं यहाँ पर बड़ा हूँ, मेरी पूजा बंद हो गई है तब से बिल्कुल। सैले ऊपर है ते आमा कुंजे लोकाइया, मेष भय सेवक मोर गेले पलाइया। पुजारी के जाने बाद, पुजारी के जाने के बाद से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, अब सावधानी से मुझे बाहर निकालो। सही है तेरा ही आमी यही कुंज स्थाने, भाल हैला आइला आमी काढ़ सावधानी, सावधानी पूर्वक निकालो मुझे। यूं कहकर बालक अंतर्धान हो गया और माधवीपुरी जागे। ये कहकर के बालक अंतर्धान हो गया, और जैसे अंतर्धान हुआ तो एकदम उनको हुआ ना, एकदम धक्का लगा कि बालक अभी बोल रहा था, मेरा हाथ पकड़े था, अंतर्धान हो गया। तो आँख खुल गई, आँख खुल गई तो विचार करने लगे कि अरे मुझे कैसा सपना आया था, विचार करने लगे। एते बाली से बालक अंतर्धान कैला, जा गया माधवपुरी विचारे करीला। माधवीपुरी पछताने लगे, पश्चाताप करने लगे, है ना। इन्हें सोचे कि आ मैं देखो कितना महान हूँ, मुझे तो भगवान ने दर्शन दिए, देखो कितना मैं बड़ा भक्त हूँ। ये नहीं, बल्कि बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। किस बात से पश्चाताप कर रहे हैं? कि मैंने साक्षात कृष्ण को देखा लेकिन मैंने उनकी स्तुति नहीं की, मुझे प्रणाम, उनको प्रणाम नहीं किया है, मैं उनको पहचान नहीं सका। यूं कहकर प्रेम आवेश में भूमि पर गिर गए। प्रेम के कारण श्री कृष्ण के देखे नु मुई नारी नु चीनी ते, ए दे बलि प्रेमावेश पड़ी ला भूमि ते। साक्षात कृष्ण मुझसे बात कर रहे हैं है? और मैं जो है उनका कुछ भी सम्मान नहीं कर पाया, कुछ भी उनकी सेवा नहीं कर पाया। माधवपुरी कुछ देर तक रोते ही रहे, रोते रहे, कोई उनके साथ नहीं था, रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया और वे अब शांत हुए कि अब आज्ञा मुझे मिली है तो मुझे वही करना है। छाने के रोदन कारी मैंने कैला धीरा, आज्ञा पालन लागे हिला सो स्थिरा। प्रातःकाल स्नान करने के बाद माधवीपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्र किया। चलो चलो आओ आओ देखो, सबको बुला रहे हैं माधवीपुरी है, बाहर निकलो अपने घरों से। और इस प्रकार कहने लगे सब लोगों से, प्रातः स्नान करी पूरी ग्राम मध्य गईला, सब लोग एकत्र कर एक तेला गीला। क्या बोले, इस गांव के स्वामी गोवर्धनधारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें उस स्थान से बाहर निकालें। चलिए चलिए, आइए आइए, इस स्थान के अधिकारी पड़े हुए हैं, मतलब जिनकी हम लोग प्रजा हैं, यहाँ के राजा राजा साहब पड़े हुए उधर, निकालो राजा साहब को, हैं पड़े हुए हैं। ग्रामेर ईश्वर तोमार गोवर्धन धारी, कहते हैं ग्रामेर ईश्वर तोमार, तुम्हारे तुम्हारे गांव के ईश्वर गोवर्धन धारी हैं पड़े हुए हैं। कुंज आछे चल तारे बाहर जे करी, चलो कुंज में उनको बाहर निकालो उधर से पड़े हुए हैं। झाड़ियां इतनी घनी हैं कि जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतः रास्ता बनाने की कुल्हाड़े और कुदाल ले ले, देखो जा नहीं सकते कोई, इसी का कुल्हाड़ा कुदाल लो रास्ता बनाने के लिए, है ना। कैसे पता चला, स्वप्न के शरीर से ले गए भगवान, इस शरीर से तो पता ही नहीं लग सकता, कौन पता लगाएगा कहां पर है। कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी और कुदाल से रास्ता बनाओ। अतंत ने भेड़े कुंज नारी प्रवेशिते, कोटारी कोदाली लाए द्वारे करी थे। ये सुनकर सारे लोग बहुत हर्षित होकर माधवेंपुरी के साथ चल पड़े। चल पड़े और उनके निर्देश अनुसार उन्होंने झाड़ियां काटकर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। माधवपुरी बता रहे इधर से रास्ता काटो, इधर से चलो, इधर से, है ना। कैसा आश्चर्य, ऐसा सपना, सपने के अनुसार रास्ता भी जो है वो बता रहे हैं। तो गोपाल उनको जब हाथ पकड़ कर ले गए थे तो उन्होंने उनको आकाश मार्ग से ले गए थे, तो नीचे दिखाते गए कि नीचे देखते जाओ रास्ता कैसे बनाना है। तो उन्होंने हाथ, गोपाल उनको हाथ पकड़ा और आकाश में ऊपर उठाया है और अपना ले जा रहे हैं, और माधवपुर नीचे देखते जा रहे हैं कि कहाँ से रास्ता बनाना पड़ेगा। उस समय तो वो स्वप्नावस्था में तो कोई थोड़ी सोचता है कि मैं भी सो रहा हूँ, है ना। लेकिन उनको फिर बाद में जब याद आया कि उन्होंने देखा था यहाँ से रास्ता बनना है, ऐसे रास्ता बनाना है, ऐसे रास्ता, और सीधे सीधे कहाँ, उधर ही, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बना है, सीधा रास्ता, क्योंकि काटने में भी तो बड़ा परिश्रम होता है, है ना। तो जहाँ से भी उन्होंने काटा रास्ता तो उसी बिंदु पर पहुँचे, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, है ना, ऐसे काटो। दिशा दिशा भी भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि इसी दिशा में काटो, ऐसे ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे करो, कहाँ काटेंगे कैसे काटेंगे, रास्ता काटना है ना। और जब वहां पर जब पहुंच गए कुंज में तो अच्छा मिग्र को धूल और घास से ढका हुआ देखा, पुजारी ने जो है वहां पर जो ढक दिया था, फिर समय के अनुसार और पेड़ पौधे खूब उसमें हो गए, है ना, और इतना घना हो गया कि कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता बिना काटे, और काटना विशेष औजारों से ही तो काटा जा सकता है, ऐसे थोड़ी काटा जा सकता है, कोई नहीं जा सकता वहाँ, है ना, कई सौ साल हो गए। तो क्या हुआ, देखा अर्चा विग्रह को धूल और घास से ढके हुए हैं भगवान, तो सब आश्चर्य हर्ष से भर गए, हैं तो हमारे राजा साहब यहाँ पड़े हुए हैं धूल में ढके हुए हैं। ठाकुर देखी ले माटी त्रणे अच्छा देता है, देखी सब लोग हिले आनंदे विस्मित है। अर्चा विग्रह के शरीर को स्वच्छ किया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा विग्रह बहुत भारी है, अकेला व्यक्ति तो हिला भी नहीं सकता है, इतने बड़े हैं, विग्रह बहुत भारी था, अतः कुछ बलवान लोग उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए एकत्र हुए। माधवेंद्रपुरी भी वहां आए, एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया, वहां पर कुछ भी नहीं था, चबूतरा वगैरह कुछ नहीं था, तो एक बड़ा पत्थर को ही जो समतल पत्थर था सिंहासन बनाया और उस पर अष्ट विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया गया, दो पत्थर इस तरह से। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्र हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया, उसे छाना गया। भगवान को नहलाना है तो गोविंद कुंड से पानी ला करके छाना, किससे छाना, वस्त्र से छाना। अष्ट विग्रह की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाया गया। कितना घड़ा? 900 घड़ा है जल। बिगुल और ढोल बजे, स्त्रियां गीत गा रही हैं। इस स्थापन के समय कुछ लोग गा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे। गांव का सारा दूध दही और घी उत्सव के लिए लाया गया, साफ जितना दूध घी और दही था साफ का सब लाया गया। और वहाँ नाना प्रकार के व्यंजन मिठाइयाँ अन्य उपहार लाए गए जिनका वर्णन किया नहीं जा सकता है, कितने प्रकार के व्यंजन लाए। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल लाए, फूल लाए, विभिन्न प्रकार के वस्त्र लाए और माधवीपुर ने स्वयं स्नान कराने का उत्सव किया। अर्चा विग्रह का अभिषेक हुआ, हाँ सबसे पहले खूब तेल मला उनको और शरीर खूब चिकना किया, उसके बाद प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, फिर 100 घड़ों में लाए गए घी और जल से महास्नान कराए। महास्नान के बाद पुनः विग्रह को सुगंधित तेल से मल करके उनके शरीर को चिकना किया गया, तब एक संख में सुगंधित जल लेकर अंतिम अभिषेक संपन्न किया। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए, फिर विग्रह पर चंदन, तुलसी माला, अन्य सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई गईं। अभिषेक हो जाने के बाद अर्चा विग्रह को धूप दीप अर्पित किए गए, विभिन्न प्रकार का भोग अर्पित किया गया। भोग में दही दूध और अनेक मिठाइयाँ सम्मिलित थीं। अब बहुत सालों से खाया नहीं था तो पूरा कवर करना है ना। बहुत सालों से नहीं खाया। सर्वप्रथम अर्चा विग्रह को तरह तरह का भोग अर्पित किया गया, फिर नए पात्रों में सुगंधित पीने का जल, आशमन के लिए जल दिया गया, अंत में भोग लगाया गया। तांबूल और पान देने के बाद भोग आरती संपन्न की गई। अंत में हर एक ने विविध प्रार्थनाएं की, विग्रह को पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में दंडवत प्रणाम किया सबने। जब ही गांव वालों को पता चला कि अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा होने जा रही है, वे अपने हाथ से सारा चावल, दाल, गेहूं का आटा लाए। ये सामग्री इतनी मात्रा में थी कि पर्वत की चोटी पूरी भर गई, इतना सब। गांव जब गांव वाले चावल, दाल, आटा लाए तो गांव के कुम्हार भोजन पकाने के सभी बर्तन लाए और प्रातःकाल से भोजन पकाना प्रारंभ हुआ। 10 ब्राह्मणों ने भोजन पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी और रसदार सब्जियाँ पकाई। सारी तरकारियाँ जंगल से एकत्र किए गए साग, जड़ों और फलों से बनाई गई। किसी ने दाल पीसकर बड़े और बढ़िया बनाई। इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई, उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ा। सारी सब्जियां, दाल, भात भी घी से सिक्त थे, है ना। तो काफ़ी वर्णन है इसमें, फिर आगे जो है मैं सुना रहा हूँ, काफ़ी विस्तार से वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं कथा। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा खूब बढ़िया चलती रही। तब एक दिन माधवेन्द्रपुर ने सपना देखा। 2 साल तक पूजा अच्छी चली, सपना देखा और स्वप्न में माधवेन्द्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं। ये दूसरा सपना है ना, दूसरा सपना है। पहले सपने में उन्होंने कहा कि मुझे निकालो यहाँ से, अब दूसरा सपना 2 साल के बाद दिया। और क्या कह रहे हैं कि मेरे शरीर का ताप अभी कम नहीं हुआ, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। गोपाल कहे पूरी आमर ताप नहीं जाए, मलय अज चंदन ले बेता बेसे जोड़ाए। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, कृपया तुरंत जाओ, क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो। भगवान जो और कोई नहीं कर सकता, ये काम पैदल जाना है, पैदल जाना है ना। उस समय जूते चप्पल भी नहीं थे, है ना, पैदल जाना है। वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल जाना है, चंदन लेकर के आना है ना। कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो इस काम को। मलिया जे आन जइया नीला चल है ते अन्य है ते न है तुम चला हतवारी ते। इस स्वप्न को देखकर माधवीपुरी भगवत प्रेम के भाव के कारण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से वे बंगाल जाने के लिए पूरब की ओर चल पड़े। चलने के पूर्व माधवीपुरी ने सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी। उन्होंने विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर भी बंगाल के लिए चल पड़े। चिंता थी उनको कि गोपाल की सेवा में कोई कमी ना हो, मैं चला जाऊंगा, है ना। तो अलग अलग लोगों को कई तरह की सेवाएं दे दी। जब माधवीपुरी शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में पहुंचे तो माधवीपुरी उनके भगवत प्रेम को देखकर बहुत हर्षित हुए। इस तरह से फिर ये कथा आती है। फिर वहां पर आए, कहाँ पर, रेमणा में, रेमणा में आए, है ना। और रेमणा में जो है उनके लिए भगवान ने खीर चुराई, है ना, उनके लिए भगवान ने खीर चुराई। गोवर्धन में भगवान दूध देने आए थे उनको, और वहाँ पर मंदिर की खीर चुराई और पुजारी को आदेश दिया कि मैंने चोरी की है और तुम माधवीपुर को दे के आओ, है ना। फिर अब उनको जो है चिंता हुई कि अब सवेरा होगा तो लोग जो है मेरी बहुत सम्मानित करेंगे, मुझे बहुत सम्मानित करेंगे। तो इससे डर करके माधवीपुरी चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, है ना। तो रात ही रात में वे रेमणा से चले गए। माधवीपुरी चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुँचे, जो नीलाचल के नाम से विख्यात है। वहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रेम आनंद में विह्वल हो गई। माधवीपुरी प्रेम से अभिभूत होकर कभी उठ खड़े होते, कभी भूमि पर गिर जाते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी गाते। इस प्रकार जगन्नाथ का दर्शन करके उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। जब माधवीपुरी जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी ख्याति से परिचित थे, अतः लोगों की भीड़ आने लगी और भक्ति में उनका तरह तरह के सम्मान करने लगे लोग। जबकि डर रहे हैं कि कोई सम्मान ना करे, कोई मुझे ना जाने, लेकिन लोग सम्मान कर रहे हैं। मनुष्य भले ना चाहता हो फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। माधवीपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ के जाना चाहते थे, भाई इतनी प्रतिष्ठा मुझे मिल रही, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसमें तो बंधे हैं। रेमणा को तो छोड़ दिया, लेकिन जगन्नाथपुरी को नहीं छोड़ सकते। क्यों? कि यहां से चंदन लेना है इनको, है ना। किंतु इससे गोपाल विग्रह के लिए चंदन की लकड़ी एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होती अगर ये चले जाएं तो, है ना। तो जगन्नाथ जी के सभी सेवकों और भक्तों से गोपाल के प्राकट्य की कथा बतलाई उन्होंने कि मैं जहाँ से आया हूँ गोपाल जी किस तरह से प्रकट हुए और उन्होंने चंदन मांगा है, है ना। जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना कि गोपाल चंदन चाहते हैं तो हर्षित होकर चंदन एकत्र करने लगे। गोपाल चंदन मांगे सुने भक्त गण आनंद चंदन लागे करी लजतन। और जो राजा के अधिकारियों से परिचित थे लोग उनसे मिले और कपूर चंदन मांग मांग कर एकत्र किया। इस चंदन को ले जाने के लिए माधवीपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक दिया गया और आवश्यक रास्ते का खर्चा भी दिया गया। अब क्या नहीं मिलेगा, रास्ते के चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवीपुरी को सरकारी ऑफिसरों से छूट के आवश्यक कागजात भी दिलाए गए। ये कागजात उनके हाथ में दिए गए। इन कागजातों से आपको आपकी जो है पहचान होगी कि आप चंदन लेकर के जा रहे हैं। इस तरह माधवीपुरी चंदन सहित वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ दिनों के बाद ये पुनः रेमणा में गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचे। जब माधवीपुरी गोपीनाथ के मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान के चरणों में बहुत नमस्कार किए और नृत्य और गान करने लगे। गोपीनाथ के पुजारी ने माधवीपुरी को फिर से आया देखा तो उन्हें सादर नमस्कार के उन्हें खीर प्रसाद खिलाई। आप खिलाई हैं, आप खिलाई। पहले तो पुजारी जानता भी नहीं था कि माधवीपुरी कौन है, है ना। भगवान ने कहा था कि मेरा भक्त है, माधवीपुरी नाम का मेरा भक्त है, उसको ये खीर जो मैंने चोरी की है उसको ले जाओ और खिलाओ, है ना। अब तो जो है बिना कहे खिलाया, कहीं भगवान को फिर चोरी ना करना पड़े, नहीं तो भगवान चोरी करेंगे, है ना। तो पुजारी ने खिलाई इनको खीर। उस रात माधवीपुरी ने मंदिर में विश्राम किया, किंतु फिर तीसरी बार सपना आया। उन्हीं गोपाल ने तीसरी बार सपना दिया। क्या गोपाल कह रहे हैं, हे माधवपुरी माधवीपुरी, मुझे पहले से सारा चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है। गोपाल आशीजा कहे, सोना हे माधव कर्पूर चंदन आमे पाई लामे सब, मुझे सब मिल गया। अब देखो रेमुणा से तो बहुत दूर है ना वृंदावन, लेकिन गोपाल नहीं चाहते कि अब ये कष्ट उठाएं। तो भगवान कहते हैं मुझे सब प्राप्त हो चुका है, तुम सारे चंदन कपूर के साथ घिसकर गोपीनाथ जी के विग्रह में रोज लेपन करते रहो जब तक ये समाप्त ना हो जाए। इतना मेरे शरीर में और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, अतः यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करोगे तो वो मेरे शरीर पर लेप होगा और मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। ये कहा गोपीनाथ आम आर से, एक ही अंग है यहाँ के चंदन दिले हवे मोर ताप छय। मेरे आदेश के अनुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो, मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक है वो करो, भगवान करें। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए और माधवीपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वहां बोले, माधवीपुरी ने कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर और चंदन का लेप करो जिससे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूं, ऐसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो गोपीनाथ जी को। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। गोपीनाथ के सेवक ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में पूरा का पूरा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। आगे चलकर क्या है कि एक मन चंदन था, सोचिए एक मन चंदन है, कितने दिन लगेंगे, ये 21 दिन में थोड़ी समाप्त हो सकता है एक मन चंदन। बोलो अब 21 दिन परंपरा में, अब 21 दिन ही हम लोग करते हैं, 21 दिन थोड़ी, 21 दिन में थोड़ी समाप्त होगा एक मन चंदन है। हाँ, एक दिन में 2 किलो। तो हमारे जो है अर्चा विग्रह, कितने अर्चा विग्रह हमारे मंदिर में जिनको चंदन लगाया जाता है, अगर बड़े अर्चा विग्रह देखें तो गौरताई के 2 हैं और एक पार्थार्थी का 3 हो गए और राम लक्ष्मण के 2 हो गए, तो 5 बड़े अर्चा विग्रह हैं, 5 बड़े अर्चा विग्रह हैं और छोटे अर्चा विग्रह भी 5 ही हैं। 6 मान सकते हैं। टोटल 6 कैसे,
छोटे-छोटे हैं।
हाँ ऐसे 6 मान सकते हैं। तो 6 को जो है चंदन लगाने के लिए जो 3 किलो चंदन लगता है
एक दिन में
3 किलो चंदन। लेकिन यहाँ तो डेली नहीं लगाते ना बड़े अर्चा विग्रहों के लिए, 21 दिन के अंदर पहले दिन लगाते हैं और अंतिम दिन लगाएंगे और बीच में कोई संडे पड़ता है, एकादशी पड़ती है तो लगाएंगे, तो इस तरह से लगाते हैं, तो इसे 4-5 दिन लगता है बड़ा चंदन, है ना। एक मन चंदन तो बहुत महंगा है, बहुत, अभी तो 11,500 रुपये के किलो का चंदन हमने लिया है, सबसे जो महंगा चंदन है वो है जी 11,500 का 1 किलो, 11,500 का 1 किलो चंदन है ना, अच्छी क्वालिटी का चंदन है ना। तो यहाँ गोपीनाथ के अर्चा वगैरह में 21 दिन में थोड़ी समाप्त होगा इतना चंदन, है ना। तो गोपीनाथ के सेवक बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, माधवीपुरी ने कहा ये 2 सेवक चंदन घिसेंगे, उनके साथ थे ना एक ब्राह्मण था, एक से बता तो ये चंदन घिसेंगे और दो अन्य व्यक्ति भी आप ले लो जिनका वेतन मैं दूंगा, दो और आदमियों को बुलाओ, चार आदमी चंदन घिसेंगे, है ना। इस प्रकार रोज गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता था, ऐसे गोपीनाथ के सेवक बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता है, एक मन चंदन, समझ रहे, एक मन चंदन लगाया। अब सोच लो कितने दिन में, अगर एक किलो चंदन अगर मान लो लगाया एक दिन में तो 37 दिन लगेंगे, 37 किलो का ही मन है ना, तो 37 दिन एक किलो, अगर आधा किलो चंदन लगाया तो कितना दिन हुए, 74 दिन, 74 दिन, हाँ आधा किलो से ज़्यादा थोड़ी, चार आदमी घिसेंगे तो आधा किलो चंदन ही घिस पाएंगे दिन भर में, चंदन थोड़ी घिसते रहो घिसते रहो कहाँ ख़त्म होता है चंदन एक दिन में चार आदमी अगर घिसेंगे आधा किलो से ज़्यादा चंदन थोड़ी घिस पाएंगे, बहुत परिश्रम तो दिन भर घिसेंगे चार आदमी अगर तो आधा किलो ही चंदन घिस पाएंगे, इतना ना। तो जब तक चंदन का लेप पूरा समाप्त नहीं हो गया माधवीपुरी वहीं तक रहे, वहीं पर रहे, उनकी देख उनकी चिंता थी गोपीनाथ जी के शरीर में ही लगना चाहिए पूरा चंदन, कोई इधर उधर ना जाए, उनकी चिंता थी ना। इस तरह माधवीपुरी चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा और फिर कहा कि नित्यानंद से निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधवेंद्रपुरी के समान कोई और भाग्यशाली है। इतने भाग्यशाली थे कि भगवान कृष्ण उनके सामने दूध देने के बहाने प्रकट हुए, भगवान ने माधवीपुरी को स्वप्न में 3 बार आदेश दिया। माधवीपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए, उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। माधवीपुरी के कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर का पात्र चुराया, इस तरह वे क्षीर चूरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। माधवीपुरी ने गोपीनाथ के सेवा विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम से बेहबल हो गए। मुसलमानों द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन कपूर लेकर यात्रा करना बहुत असुविधाजनक था, मुसलमानों का शासन है ना, चंदन कपूर लेके जाना क्यों है ना, आप समझ रहे हैं, मुसलमानों के शासन में अगर कहें भाई चंदन गोपाल जी को लेके जाना है तो विशेष रूप जब्त कर लेंगे, क्योंकि वो ईर्ष्यालु होते हैं ना, मूर्ति पूजा के बहुत विरोधी होते हैं मुसलमान लोग है ना, तो बहुत मतलब इसलिए गोपाल अर्चा विग्रह ने खुद ही सोचा कि इनको जो है परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि तुम उनको लगाओ तो मुझे मिल जाएगा। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो केवल लीला कर रहे हैं है ना, भगवान इतने दयालु हैं है? कि जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवीपुरी का परिश्रम सार्थक हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया कि माधवेंद्रपुरी अकेले रहते थे, पूर्ण विरक्त थे, मौन रहते थे, किसी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे, कि कोई साथ में रहेगा तो कुछ बातें होंगी उल्टी सीधी है ना, और कृष्ण कथा के अलावा कुछ और बातें होंगी। गोपाल जी का आदेश पाकर इस महापुरुष ने चंदन एकत्र करने के लिए हजारों मील की यात्रा की, हजारों मीलों की पैदल यात्रा की, सोचिए, और भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा और गोपाल के निमित्त चंदन का भार उठाया। एक मन चंदन लिया और 20 तोला कपूर गोपाल विग्रह का लेप करने के लिए आए, यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था कि गोपाल की सेवा में कर रहा हूँ, ये आनंद था। चूंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया, किंतु माधवीपुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन प्रपत्र दिखलाया, जिससे वे कठिनाइयों से बच गए। माधवीपुरी ने उन कागजातों को बहुत सावधानी से रखा अपने साथ, क्योंकि वे कागजात दिखा करके ही नहीं तो पूरा चंदन जब्त हो गया था कि नहीं मिलेगा, ये चंदन नहीं ले जा सकते। और वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए। यद्यपि माधवीपुरी के पास एक पैसा नहीं था, किंतु वे चुंगी अफसरों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझा उठाकर ले चलने में था। प्रेम का ऐसा परिणाम है कि भक्त अपनी सुविधाओं पर विचार नहीं करता, सभी परिस्थितियों में वो भगवान की सेवा करना चाहता है। श्री गोपाल ये दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, अतः उन्होंने नीलाचल से चंदन और कपूर लाने के लिए उनसे कहा। भगवान ने क्यों कहा माधवीपुरी को? संसार को दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति इतना भी प्रेम कर सकता है, भगवान से कोई व्यक्ति इतना भी प्रेम कर सकता है, इतना परिश्रम करे कोई व्यक्ति। भगवान गोपाल ने माधवीपुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया, और जब माधवीपुरी इस परीक्षा में खड़े उतरे तो भगवान उन पर बहुत कृपालु हुए। भक्त और भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के मध्य प्रेम भक्ति ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है, साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती है। तो इस तरह से हमने कुछ सुनी ये कथा। चंदन यात्रा की कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है, हमने तो केवल दोहराया है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी,
कल आज कलयुग खत्म हो रहा है और किसी की जिनकी उम्र है वो 10 साल है, तो क्या अगले दिन उसके 1,00,000 साल ऐड हो जाएगा उसमें?
नहीं, आप क्या कह रहे हैं कलयुग खत्म हो रहा है?
मान लीजिए आज कलयुग का आखिरी दिन है।
हाँ
ठीक है, और जीव की जो उम्र है वो है 10 साल।
हाँ,
तो अगले युग में जब वो जाएगा तो क्या 1,00,000 साल और ऐड हो जाएगा उसमें?
हाँ, जो भी हो, वैसे तो कलयुग के अंत में कल के भगवान आएंगे, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कलयुग के अंत में कल के भगवान आएंगे और कल के भगवान लेच्छों का संहार करेंगे। कि कलयुग में कुछ ऐसे मतलब दुष्ट होंगे कि उनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, वो समझाने से वो नहीं समझेंगे, है ना। तो कल के भगवान जो है उनका वध करेंगे, है ना। और बाकी जो उनके आदेश का पालन करने वाले होंगे तो उनके शरीर से निकली हुई सुगंध के द्वारा ही उनके मन पवित्र हो जाएंगे, उनकी आयु, उनका शरीर सब जो है मतलब वैसा होगा।
तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली
सत्युग सत्युग प्रारंभ होगा, है ना। हाँ, शरीर भी इतना बड़ा हो जाएगा, सत्युग में शरीर कितना बड़ा होता है, फिर त्रेता में कम से कम, और कलयुग में छोटा और फिर छोटा छोटा, है ना। वृक्ष भी जो है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो बेर के वृक्ष के समान हो जाएंगे।
प्रभु जी, मैं तो सुना कि सत्युग जब कलयुग खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा एंड रीस्टार्ट होगा, प्रलय आ जाएगी, ऐसा नहीं है?
नहीं, प्रलय नहीं आती, प्रलय नहीं आती, क्योंकि कल के भगवान का अवतार इसी तरह बताया गया है और उनके समय में सत्युग शुरू होगा, कल के भगवान ही जो है सत्युग को लाएंगे। तो अक्षय नवमी के दिन कल के भगवान जो है अपने जो है घोड़े पर सवार होकर के, घोड़े का नाम भी देवदत्त है, देवदत्त नामक घोड़े में बैठ करके जो है वो संहार करेंगे पूरी पृथ्वी में, उनके शरीर से निकली ही सुगंध से, वायु से सब लोगों के मन पवित्र हो जाएंगे और शरीर भी हो जाएंगे, ऐसा बताया गया। ठीक है, और कोई है? रेमुणा कहाँ पर है, कौन बताएगा? उड़ीसा में रेमुणा, मैं खुद नहीं गया रेमुणा। ठीक है, धन्यवाद। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।